आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने।
सीताराम सीताराम। ओ बावनदास जी आइए, लक्ष्मी मुड़ा देती है। बालदेव जी कहाँ हैं? आइए साहेब बंदगी। जय हिंद। बालदेव जी आ गए।
जय हिंद।
बावनदास को देखकर डर लगता है, एकदम सूखकर कांटा हो गए हैं। बाल इतना ज्यादा कैसे पक गया?
ओ आज टोपी नहीं पहने हैं इसीलिए आवाज भी बदल गई है।
बालदेव जी कहते हैं,
आपको तो यहाँ समय ही नहीं है। उस दिन हम अकेला जिस समय से रेडियो में सुने, उसी समय से लेकर दूसरे दिन जलप्रवाह तक सब कुछ किया, किसी तरह संभाल लिया। सरात के दिन तहसीलदार साहब भोज देने वाले हैं, बामन राजपूत यादव और हरिजन सभी एक पंगत में बैठकर खाएंगे। अच्छा हुआ आप भी आ गए, अकेले हम
नहीं। बालदेव जी हम रहेंगे नहीं, हम जरूरी काम से जा रहे हैं, सोचा एक बार आप लोगों से भेंट करते चलें। हम तुरंत अभी चले जाएंगे।
अच्छा उधर का हाल समाचार क्या है, सुनाइए।
हाल क्या सुनिएगा, अब सुनना सुनाना क्या है। रामकिशुन आश्रम में भी हरिजन भोजन होगा। बिलिक भी कल मर गया। शिवनाथ बाबू आए हैं पटना से। ससांग जी परांती सभापति हो गए हैं, वो भी पटना में ही रहेंगे। सब आदमी अब पटना में रहेंगे, मेले लोग तो हमेशा वहीं रहते हैं। सुराज मिल गया अब क्या है, छोटन बाबू का राज है। एक कोरी बेमान बिलेक मार्केटी के साथ कचहरी में घूमते रहते हैं, हाकिमों के यहाँ दांत खिटकाते फिरते हैं, सब चौपट हो गया। बावनदास कहते कहते रुक जाता है। छोटन बाबू की बात मत पूछिए, अब तो घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए हैं।
नहीं बालदेव, छोटन बाबू जैसे छोटे लोगों की बात जाने दो, यह बीमारी ऊपर से आई है, ये पटनिया रोग है। अब तो और धूमधाम से फैलेगा, भूमिहार राजपूत कैथ जाधव हरिजन सब लड़ रहे हैं। अगले चुनाव में तिगुना मेले चुने जाएंगे, किसका आदमी ज्यादा चुना जाए इसी की लड़ाई है। यदि राजपूत पार्टी के लोग ज्यादा आए तो सबसे बड़ा मंत्री भी राजपूत होगा। परसों बात हो रही थी आश्रम में, छोटन बाबू और अमीन बाबू पतिया रहे थे, गांधी जी का भस्म लेकर ससांग जी आएंगे। छोटन बाबू बोले जिला का कोटा भस्म जिला सभापति को ही लेना चाहिए। ससांग जी क्यों ले रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है।
बावनदास विचित्र हंसी हंसता है, ऐसी हंसी तो कभी नहीं देखी, बालदेव जी ने भी नहीं।
काहे हंसते काहे हैं दास जी?
अरे वही अमीन बाबू तुरंत उठकर बैठ गए, बोले आप ठीक कहते हैं छोटन बाबू, गाड़ी तो चली गई, कटिहार जाने से गाड़ी मिल सकती है। तुरंत मोटर स्टार्ट करके दोनों रवाना हो गए। सभापति मंत्री, ओ राम राम मिलाए जोड़ी। चले दोनों भसम लाने। देश को भसम कर देंगे ये लोग, भस्मासुर।
दास जी मालूम होता है कोई सोशलिस्ट ने आपको,
सोशलिस्ट सोशलिस्ट क्या कहेगा सोशलिस्ट हमको, सब पार्टी समान। उस पार्टी में भी जितने बड़े लोग हैं मंत्री बनने के लिए मार कर रहे हैं, सब मेले मंत्री होना चाहते हैं। बालदेव देश का काम, गरीबों का काम, चाहे मजूरों का काम, जो भी करते हैं एक ही लोभ से। उस पार्टी में बस एक जयप्रकाश बाबू हैं, हाँ उनको भी कोई गोली मार देगा, फिर भसम लेने के लिए सभापति मंत्री साथ है साथ।
नया चूड़ा और नया गुड़ एक थरिया में ले आती है लक्ष्मी, जरा बाल भोग कर लीजिए, थोड़ा सा है, दूध दही तो भोज के लिए जमाया जा रहा है। बावनदास बगल की झोली का मुंह फैलाते हैं। लक्ष्मी कहती है, ये क्या आप जलपान कीजिए, झोली में क्यों लेते हैं? लक्ष्मी की आंखें न जाने क्यों सजल हो जाती हैं, इतने दिनों के बाद एक वैष्णव आया और बिना पत्थर जुटाए चला जाएगा? नहीं वो ऐसा नहीं होने देगी, नहीं बाल भोग तो आपको करना ही होगा। लक्ष्मी जिद करती है,
दास जी विनती करती हूँ।
बालदेव जी देखते हैं बावनदास को कुछ हो गया है, बड़ा अटर पटर बोलते हैं, चेहरा भी एकदम बदल गया है, आंखें लाल हैं, कपड़ा कितना मैला हो गया है। वो 16-17 साल से बावनदास के साथ हैं, कभी तो ऐसा हंसते नहीं देखा। अलमुनिया को लोटा और बाटी नहीं छोड़ते हैं कभी। जलपान करके हाथ धोते हुए बावनदास जी कहते हैं,
बालदेव जी
अब हम चलेंगे, उवरिया लैंड की गाड़ी कोदलिया स्टेशन में जाकर पकड़ेंगे। आपसे एक काम है।
बावनदास झोली से लाल रंग का एक बस्ता निकालते हैं। बस्ता खोलकर कागज का छोटा सा पुलिंदा निकालते हैं।
बालदेव जी, सब महात्मा जी के खत हैं। गंगुली जी ने एक बार कहा था, जरूरत पड़ने पर हमें दीजिएगा। आने के समय याद ही नहीं रहा। आप पुरानिया कब तक जाइएगा?
4-5 दिन के बाद।
तब ठीक है, आप रख लीजिए, गांगुली जी को दे दीजिएगा जरूर।
परम श्रद्धा भक्ति से सहेजी हुई पवित्र चिट्ठियों को बावनदास एकटक देख रहा है, फिर एक एक कर अलग अलग छांटता है। हवा से एक चिट्ठी उड़कर बिछावन के नीचे चली गई। बावनदास ने चट से उठकर सर से झुला लिया। उसे एक अक्षर का भी बोध नहीं, लेकिन वो प्रत्येक चिट्ठी के एक एक शब्द पर निगाह डालता है। लगता है सचमुच पढ़ रहा है। आखिरी चिट्ठी खत्म कर वो एक लंबी सांस लेता है। बस्ता हाथ में लेकर बावनदास थोड़ी देर तक बेकार ही उसकी डोरी को उंगलियों में लपेटता और खोलता है, फिर एक लंबी सांस लेकर अचानक ही खड़ा हो जाता है।
लीजिए, सीताराम सीताराम।
बालदेव जी बस्ता लेकर लक्ष्मी के हाथ में दे देते हैं। पौती पिटारे में रख दीजिए। लक्ष्मी बस्ता लेकर सर से झुलाती है, फिर छाती से लगाती है। वो एक टक बावनदास को देख रहा है। इस चिरकुट खद्दड़ की धुलाई से जाड़ा कैसे काटते हैं बावनदास जी?
दास, इस चादर से जाड़ा कैसे काटते हैं? ठहरिए, एक पुराना कंबल है, ले लीजिए,
लक्ष्मी विनती के सुर में कहती है।
नहीं माई,
बावनदास कंधे से झोली को लटकाते हुए कहता है।
नहीं माई, कंबल की जरूरत नहीं।
लक्ष्मी चुप हो जाती है। बावनदास जी को अब कंबल की जरूरत नहीं, अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। लक्ष्मी मानो सब कुछ समझ जाती है। धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औखदी, मन फाटे नहीं ठोर।
अच्छा तो अब जय हिंद,
जय हिंद। बावनदास लुढ़कता हुआ जा रहा है। सोबरन का कटहा कुत्ता खिटखिटाकर भोंकते हुए उस पर टूटता है, लेकिन बावनदास उधर देखता तक नहीं है। कुत्ता भी आश्चर्य से चुप हो जाता है। जरा सा थित थित भी नहीं किया, कैसा आदमी है। कुत्ता बावनदास के पीछे पीछे दुम हिलाते मिट्टी सूंघते कुछ दूर तक जाता है। बावनदास जी का मन एकदम फट गया है, लक्ष्मी कहती है। बालदेव जी कहते हैं,
अरे मन फटेगा क्या, थोड़ा ढोंग भी करता है। गंगुली जी चिट्ठी लेकर क्या करेंगे? दूसरे की चिट्ठी भले लोग नहीं पढ़ते हैं, दोख होता है।
कोदलिया स्टेशन पर गाड़ी में बैठकर बावनदास को लगता है वो कोई तीर्थ करने जा रहा है। बहुत दिनों से उसके मन में लालसा है एक बार जगन्नाथ जी जाने की। केदारनाथ बद्रिकानाथ वो गया है। उसकी आंखों के आगे जगन्नाथ का पट छाता और छड़ी लिए तीर्थ से लौटे हुए बावनदास की मूर्तियां खड़ी होती है। जगन्नाथिया राव भाए, बामा राव बिराजे उड़िया देश में। एक यात्री ने कहा,
अरे माघ महीना में कौन जगन्नाथ से लौटा है भाई?
दूसरे ने कहा, जरा जोर से बावन गुसाई जी। बावनदास खिड़की से बाहर की ओर देखता है। खेतों में लोग धान काट रहे हैं, नदी में मछली मार रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं। बावन ने बहुत सफर किया है। लैन से कलकत्ता कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस, बैजवाड़ा, साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी की जन्मभूमि कठियावाड़, फिर बम्बई। रेलवे लाइन के किनारे काम करते हुए लोगों के मुखड़े, विभिन्न प्रदेश के लोगों के मुखड़े उसकी आंखों के आगे इकट्ठे हो जाते हैं। खगड़ा स्टेशन पर उतरकर एक बार नत्थू बाबू के यहाँ जाने का विचार था, लेकिन नत्थू बाबू कलकत्ता गए हैं। खोखी दीदी और काकी जी भी गई हैं। खोखी दीदी ने एक बार बावनदास की तस्वीर बनाई थी। बोली, बस आप जैसे बैठे हैं बैठे रहिए। एक कागज पर पेंसिल से तस्वीर बनाने लगी। काकी जी ठीक माई जी की तरह बोलती हैं। नाथ बाबू रहते तो बावन को आज बहुत भारी मदद मिलती। बहुत कड़े आदमी हैं। गुस्सा में जब होते हैं तो किसी को कुछ नहीं बूझते हैं। कंफ जेहल के साहब को जिंदगी भर याद रहेगा। नाथ बाबू का चेहरा लाल हो गया था उस दिन, एकदम लाल टेसू। पिछले साल नाथ बाबू और चौधरी जी बम्बे जा रहे थे, बावनदास भी साथ में था। मुगल सराय स्टेशन पर गाड़ी में भीड़ देखकर होश गुम। इस छोर से उस छोर तक घूमाए मगर कहीं घुसने नहीं दिया। चौधरी जी हंसते हुए बोले,
एहो गाड़ी छूटे तो लच्छन लगा छे हो।
नाथ बाबू ने एक डिब्बे के हैंडल को जैसे ही पकड़ा कि अंदर से एक आदमी ने गुस्सा होकर कहा,
देखता है नहीं, इस पर लिखा हुआ बंगाल के मेंबर के वास्ते रिजर्व है।
नाथ बाबू ने भी गुस्सा कर जवाब दिया था,
खूब देखता है, बंगाल में अब आप लोगों के जैसा आदमी फलने लगा है, ये भी देखता है। हम भी AICC का मेंबर है, आप भी उसी का मेंबर है, मगर आदमियत।
भीतर से किसी ने रसिकता की थी।
आदमियत तूले यार कोथा बोलबे ना मोशाय, आसुन आपनार तो देखची एके बोरे त्रिमूर्ति।
अर्थात कृपया आदमियत का प्रश्न मत उठाइए, जाइए, हमें तो एक साथ ही त्रिमूर्ति के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। बात भी कुछ ऐसी ही हो गई कि सभी हंस पड़े, चौधरी जी भी, नाथ बाबू भी और डिब्बे के सभी मेंबर। हंसने वाली बात नहीं है, चौधरी जी एकदम लंबा, यानी चौधरी जी की लंबाई की बात तो सब जानते हैं। पूरा ऊंचे कद का आदमी भी उनके कंधे के बराबर होता है। और इधर नाथ बाबू ठेठ नाटकत के, गोल चेहरा, चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट, वो भी छोटी सी। और तीसरा मूर्ति सेवक बावन दास। विचार कर देखिए हंसने की बात है या नहीं। चौधरी जी ने ऊपर बेंच पर अपना बिस्तर लंबा किया था, नाथ बाबू और बावन दास नीचे।
हैं, खड़गा आ गया, सीताराम सीताराम।
खड़गा स्टेशन पर उतर कर बावन दास एक बार ऊपर आसमान की ओर देखता है। वो शाम तक पहुंच जाएगा, नहीं नाथ बाबू से नहीं भेंट होगी तो अब किससे भेंट करने जाएगा। कली मुद्दीपुर की ओर जा रहा है बावन। कली मुद्दीपुर पाकिस्तान में जाते जाते बच गया है। एक बार हल्ला हुआ कि पाकिस्तान वाले कहते थे कि गांव का नाम इस्लामी है, इसीलिए इसको क्या बच्चों जैसी बुद्धि।
सीताराम सीताराम।
बावन दास जी जल्दी जल्दी ढेक बढ़ाता है। आज जैसे हो शाम तक उसे पहुंचना ही है एक जगह। उस जगह का नाम भी अभी वो अपने मन में नहीं लाएगा। चलते चलते वो कभी कभार रुक कर उसांसें लेता है। बहुत देर तक रोने पर बच्चे जिस तरह उसांसें लेते हैं, उसी तरह। बावन दास की झोली में खंजड़ी है। खंजड़ी में लगी हुई झुनकी उसकी गति को एक लय में बांध रही है। किन्न 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 किन्न। खेतों के मेड़ों पर, मैदानों में, सड़कों पर, ऊंची नीची जमीन पर उसके चरण पड़ते हैं। मंजिल करीब है अब। किन्न 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 किन्न। और थोड़ी दूर, और आधा कोस। किन्न किन्न।
जय महात्मा जी, जय बापू, माँ माँ, धन हो प्रभु, एक परीक्षा से तो पार करा दिया प्रभु। बस यही इसी साहुड़ के नीचे, इसी कच्ची लीक के पास डाल दो डेरा रे मन।
नागर नदी के किनारे। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया गया है दोनों देश वालों ने। नागर नदी ही सीमा रेखा है। एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। इस पार हिंदुस्तान, दूसरी ओर पाकिस्तान। नागर बारहों मास बहती है, सूखती नहीं कभी, शायद इसीलिए। रामडंडी माथा पर आ गया। माघ की ठिठुरती हुई सर्दी, पछिया हवा भी चलती है। लगता है आज की रात बद्रीनाथ की तरह यहां भी बर्फ गिरेगी। रामडंडी सिर पर आ गया। बावन निराश नहीं होता है। जब तक सूरज नहीं उगेगा वो टलेगा नहीं। बात ही कुछ ऐसी है, यदि इस रास्ते से नहीं आई गाड़ी तो। वो दूर, बहुत दूर किसी गांव की रोशनी को देखता है। दोनों हाथों को मलकर गर्म हो लेता है। हाँ, गाड़ियां आएंगी, पचासों गाड़ियां, कपड़े और चीनी और सीमेंट से लदी हुई गाड़ियां। जिसने खबर दी है उसे उसका नाम वो जान जाने पर भी नहीं खोलेगा। बावन ने गांधी जी की कसम खाई है। बेचारा गरीब, उसकी नौकरी चली जाएगी। कटहा के दुलार चंद कापरा, वही जुआ कंपनी वाला जिसके जुए की दुकान पर नेवीलाल, भोला बाबू और बावन ने फारबिसगंज मेला में पिकेटिंग किया था। जुआ भी नहीं, एकदम पॉकेट कार्ड खेला करता था और मोरंगिया लड़कियों, मोरंगिया दारू गांजा का कारोबार करता था। आज कटहा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी है, उसी की गाड़ियां हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर और कटहा थाना के दारोगा और यहाँ कलमिंदीपुर के नाका वाले हवलदार मिलाकर रकम 8 आना और इधर दुलारचंद कापरा रकम 8 आना। गाड़ियां सदर चालू सड़क से नहीं आएंगी, चौरपेड़ा होकर, चोरघोट होकर पार करेंगी, फिर उधर से व्यापारी को उस पर पहुंचा देगा। उधर के हाकिम मुक्कामों को भी इस तरह हिस्सा मिलेगा। लाखों रुपए का कारोबार है। वो आ गई, हाँ गाड़ियां, कच्ची लेक में पहियों की आवाज। हाँ गाड़ी ही है।
जय भगवान, जय महात्मा जी, सीताराम सीताराम। बल दो प्रभु, परीक्षा में पार करो प्रभु। बापू बापू, माँ माँ।
झोली के अंदर वो कुछ टटोलता है। वो झोली को कंधे से लटकाकर खड़ा हो जाता है। नदी किनारे कोई पखेरू बोला, टिंटिक किन। खंजड़ी की झुनकी जरा झमकी।
भगवान, महात्मा जी, बापू, माँ, मुझे बुला लो अपने पास। क्या करूंगे इस दुनिया में रहकर, धर्म नहीं बचेगा।
गाड़ियां आ गईं, एकदम करीब।
अरे बाप रे भूत!
अगला गाड़ीवान डरा और दबी आवाज में अपने साथी से कहता है,
भूत!
क्यों? बैल भड़कते हैं, कचकचाकर गाड़ियां रुक जाती हैं।
सीताराम सीताराम!
कलीमुंदीपुर नाका के सिपाही जी आगे बढ़ते हैं, खखार कर पूछते हैं,
कौन है?
बगल की झाड़ी से सामने आकर बावन ने कहा,
हम हैं सेवक बावन दास।
बावन दास?
सिपाही जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस आदमी को वो सन 30 से ही जानता है। सिपाही जी मुरेठा की पूछरी से मुंह छिपाते हैं। बावन दास हंसकर कहता है,
मुंह क्यों छिपाते हो राम बुझावन सिंह जी? आज खुलकर खेला होना चाहिए, मुंह मत छिपाइए।
दास जी, हमारा क्या कसूर, आप तो जानते ही हैं।
सिंह जी, बात कुछ भी नहीं, गाड़ियां जाएंगी खड़गा, लौटाइए।
गाड़ी तो ना लौटी।
लौटी ना तो ठाड़ रही। 2,500 रुपए हिस्से में मिल चुके हैं राम बुझावन सिंह को, क्या किया जाए?
दास जी ठहरिए, हम तुरंत आते हैं।
अच्छी बात, ले आइए आज जो लोग पर्दे में हैं, जाइए।
कलीमंदीपुर में एक होटल बंगला है, हाके मुक्काम लोग बराबर आते रहते हैं। बांस फूस का बड़ा सा चौकड़ा है, गांव के एकदम बाहर। होटल बंगला में सप्लाई इंस्पेक्टर दुलार चंद कापरा और कलीमुंदीपुर के हवलदार साहब टेबल के चारों ओर बैठकर मोरंगिया माल पी रहे हैं। कलीमुंदीपुर होटल बंगला के वेरस पतिया बावर्ची के हाथ का मुर्ग मुसल्लम जिसने खाया उसी ने जी खोलकर बख्शीश दिया। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब गिलास में चुस्के लगाते हुए मुस्कुराते हैं।
अरे धत, इस मुर्ग मुसल्लम में गर्मी थोड़ी आएगी। हवलदार साहब, अरे कोई दो टांग वाली मुर्गी।
क्या पूछते हैं, आज महात्मा जी के श्राद्ध की वजह से सभी भोज खाने चली गई हैं।
दुलार चंद कापरा कहता है,
ऐसा जानते तो कटहा से ही 2 रिफ्यूजी नहीं उठा लाते, सब मजा किरकिरा कर दिया।
सप्लाई इंस्पेक्टर चतुरानंद सिंह जी मुर्गी की टांग चबाते हैं। बाहर साइकिल की आवाज होती है।
कौन?
सलाम, हम राम बुझावन सिंह।
क्या हाल है?
सब चौपट। बावन दास?
हाँ, बावन दास कहाँ?
सभी गुम हो गए। बेरसपतिया बावर्ची इशारे से कहता है हवलदार साहब को, मिल सकती है मुर्गी, मगर रुककर दोनों हाथों की उंगलियां दिखलाता है। हवलदार साहब कहते हैं,
अच्छा अभी ठहरो, तुम बाहर जाओ।
क्या हूं अब?
सभी एक साथ लंबी सांस लेते हैं।
अकेला है या?
एकदम अकेला।
मगर इसका मतलब जानते हैं? दुलार चंद जी, कापरा जी, सबकी निगाहें मिलती हैं आपस में। दुलार चंद गिलास में बोतल से शराब ढालकर गटगटाकर पी जाता है। सभी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं।
मैं पंजाबी हूं जी, मगर आगे आप लोग जानो, मैं अपना फर्ज अदा करने जाता हूं।
सिट सिट कर पछी हवा चल रही है। हवलदार साहब साइकिल का पैडल चलाते हुए कहते हैं,
कापरा जी, आसपास के गांव वालों का डर जरा भी मत कीजिए। ऐलान किया हुआ है कि सरहद के आसपास रात बिरात जो निकलेगा उसे गोली लग जा सकती है।
बावन दास ठीक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है बीच लीक पर। दुलारचंद कापरा देखता है।
हाँ, बावन ही है।
कौन? कापरा जी, गाड़ी के पीछे से क्या झांकते हैं, सामने आइए।
बावन दास हंसता है।
बावन, रास्ता छोड़ दो, गाड़ी पास होने दो।
आइए सामने, पास कराइए गाड़ी। आप भी कांग्रेस के मेंबर हैं और
हम भी, खाता खुला हुआ है,
अपना अपना हिसाब किताब लिखाइए। आज के इस पवित्र दिन को हम कलंक नहीं लगने देंगे।
कापरा जानता है इससे माथा पच्चे करना बेकार है। वो हवलदार के कान में कुछ कहता है, फिर पुकारता है,
स्प्रिंग खां। कहां?
ये स्प्रिंग खां कापरा का अपना आदमी है, नाम फर्जी है। एक गाड़ी पर से उतरता है, फिर चुपचाप अगली गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है।
बावन दास, मान जाओ।
हाँ को जी, गाड़ी स्प्रिंग खां।
गाड़ी में जुटे हुए दोनों जानवर अचरज से चौंक पड़ते हैं, भड़कते हैं, नाक से आवाज करके आगे बढ़ने से इंकार करते हैं। कापरा एक बैल की पूंछ पकड़कर हटता है। हड्डी पट्ट से बोली, मगर बैलों ने लीक छोड़ दिया और गाड़ी को बगल की ओर लेकर भागे। दूसरी गाड़ी, एक बैल को हवलदार और दूसरे को कापरा पूंछ मरोड़कर आगे बढ़ाते हैं। गाड़ीवान अवाक होकर हाथ में रास थामे हुए हैं। ये क्या हो रहा है?
बैलगाड़ी पास हो गई,
पास हो रही है। बावन दास बीच लीक पर खड़ा है और गाड़ियां ऊपर से आर पार कर रही हैं। बैल भड़के जरूर, मगर तीन चार चार गाड़ियां। अब बावन दास ठीक बैल के सामने आकर खड़ा होता है। बैल उसे हुत्था मारकर गिरा देता है। वो लीक पर लुढ़क जाता है ठीक पहिए के नीचे।
पापू माँ,
गाड़ी पास, कटर्रकट, गाड़ियां पास हो रही हैं, 50 गाड़ियां। आखिरी गाड़ी जब गुजर गई तो हवलदार और रामभुजावन सिंह मिलकर बावन की चिट्ठी चिट्ठी लाश, लहू के कीचड़ में लथपथ लाश को उठाकर चलते हैं। नाकर नदी के उस पार पाकिस्तान में फेंकना होगा, इधर नहीं, हरगिज नहीं। दुलार चंद कापरा बावन की झोली लेकर उनके पीछे पीछे जाता है। नगर पार करते समय बावन के गले की तुलसी माला नागर की बहती हुई धारा में गिर पड़ती है। सीताराम। 4 बजे भोर को पाकिस्तान पुलिस ने घाट गश्त लगाने के समय देखा लाश। अरे ये तो उस पार के बौने की है, यहां कैसे आई? ओ समझ गए, उठाओ जी हनीफ और जुम्मन, ले चलो उस पार। बावन की ठंडी लाश झोली झंडा के साथ फिर उठी। बावन ने 2 आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा, नदी में ही डाल दो, इसके झोलवी को उस पार दरख्त से लटका दो, जल्दी। नागर की धारा हठात कलकला उठी। सिपाही खंजड़ी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो। झनक।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।